अध्याय 20 चाहमान वंश विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। उत्पत्ति। चाहमान वंश की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। पहला, डॉक्टर भंडारकर चाहमानों को विदेशी गुर्जरों की संतान मानते हैं, इस मत का पीछे खंडन किया जा चुका है। दूसरा, पृथ्वीराज रासो इस वंश की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताता है। तीसरा, हम्मीर महाकाव्य का कथन है कि ब्रह्मा ने पुष्कर तीर्थ में एक यज्ञ किया था, उसकी रक्षा के लिए सूर्य ने चाहमान नामक योद्धा को उत्पन्न किया था। चौथा, अभिलेख और साहित्यिक साक्ष्य चाहमानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं। शाकंभरी की शाखा। चाहमान वंश की अनेक शाखाएं थी, इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध शाकंभरी की शाखा थी। शाकंभरी का समीकरण आधुनिक सांभर नगर से किया जाता है। सांभरी राज्य में 125,000 गांव थे, अतः यह राज्य सपाल लक्ष्य के नाम से भी प्रख्यात हुआ। इस शाखा का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश ने प्रारंभ में प्रतिहार वंश के अधीन राज्य किया था। इस वंश के एक राजा दुर्लभराज प्रथम ने प्रतिहार नरेश वत्सराज की ओर से गौड़ नरेश धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध किया था। दुर्लभराज के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविंदराज अथवा गुवक प्रथम ने नागभर द्वितीय के अधीन शासन किया था, उनकी सभा में सम्मान प्राप्त किया था। पृथ्वीराज विजय से प्रकट होता है कि गुवक ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज नरेश के साथ किया था। यह कन्नौज नरेश नागभर द्वितीय था। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चाहमान गोविंद राज ने सुल्तान वेग वरिष्ठ के आक्रमण को विफल कर दिया था। वेग वरिष्ठ बशर था व सिंध के गवर्नर दाऊद का पुत्र था। गोविंद राज ने अपने अधिपति प्रतिहार नरेश के साम्राज्य की रक्षा करते हुए यह युद्ध किया होगा। चाहमान नरसिंहराज ने सर्वप्रथम अपने वंश की स्वतंत्रता घोषित की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसका पुत्र विग्रहराज द्वितीय बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने गुजरात पर आक्रमण करके चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम को पराजित किया और नर्मदा नदी तक सब अभियान किया। इसी वंश के राजा अजय राज ने अपने नाम पर अजय मेरू की स्थापना की। इसका पुत्र अड़ोराज था। इसके शासन काल में गुजरात के चालुक्य जयसिंह सिद्धराज ने शाकंभरी पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया, परंतु कुछ समय पश्चात दोनों पक्षों में संधि हो गई और जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अड़ोराज के साथ कर दिया। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163। अड़ोराज को 1153 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र जुगदेव ने मार डाला, परंतु जुगदेव भी अधिक समय तक राज्य न कर सका क्योंकि उसके छोटे भाई विग्रहराज चतुर्थ ने शीर्ग ही उससे सिंहासन लिया था। इसे विशलदेव भी कहते हैं। विग्रहराज अपने समय का बड़ा प्रतापी राजा था। उसने एक सविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसने चाहमान की अभूतपूर्व महत्ता प्रदान की। चालुक्यों से युद्ध। इस समय गुजरात में चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल का शासन था। कुमारपाल विग्रहराज के पिता अड़ोराज को पराजित कर चुका था। कुमारपाल ने चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया था और वहां अपने सामंत सज्जन को नियुक्त किया था। सज्जन का वध बिजोलिया अभिलेख से प्रकट होता है कि विग्रहराज ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और सज्जन को मार डाला। कुमारपाल ने प्रतिशोध के लिए नागौर पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता न मिली और नागौर का घेरा उठाना पड़ा। अन्य चालुक्य सामंतों की पराजय। इस समय नाडोल जालोर और पल्लिका पर चालुक्य सामंत शासन कर रहे थे। विग्रहराज ने नाडोल पर आक्रमण करके चाहमान कुंतपाल को पराजित किया तथा नाडोल को रौंद डाला। जालोर पर आक्रमण करके उसने उसे जला दिया और पल्लिकों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार विग्रहराज ने चालुक्य वंश को पराजित कर अपने पिता की पराजय का बदला लिया। बिजोलिया अभिलेख का कथन है कि विग्रहराज ने चालुक्य नरेश कुमारपाल को करवालपाल बना दिया था। इसे अक्षरशः सत्य न मानना चाहिए, परंतु इतना निश्चित है कि चालुक्य वंश के विरुद्ध विग्रहराज को बड़ी सफलता मिली थी। इन विजयों के परिणाम स्वरूप विग्रहराज का चित्तौड़ बिजोलिया मांडलगढ़ और जहाजपुर के प्रदेशों पर अधिकार हो गया। यहाँ उसके वंश में अभिलेख मिले हैं। भदानकों की पराजय। बिजोलिया अभिलेख का कथन है कि विग्रहराज ने भदानकों को पराजित किया था। इनका राज्य मथुरा और भरतपुर के बीच में था। दिल्ली पर अधिकार। पालम बावली और दिल्ली संग्रहालय अभिलेखों से प्रकट होता है कि दिल्ली पर तोमोर वंश का राज्य था। बिजोलिया अभिलेख का कथन है कि विग्रहराज ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात तोमर वंश दिल्ली में चाहमान वंश के अधीन सामंत वंश के रूप में राज्य करने लगा। हांशी का अधिकार। हांशी में भी तोमोर वंश का राज्य था। बिजोलिया अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसे भी विग्रहराज ने अपने अधीन कर लिया था। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात विग्रहराज को पंजाब के मुस्लिम शासकों से टक्कर लेनी पड़ी। दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप चौहान वंश को पंजाब के मुस्लिम राज्य के प्रसार के विरुद्ध मोर्चा लेना पड़ा। मुसलमानों से युद्ध। इस समय पंजाब में खुसरो शाह का राज्य था। ललित विग्रहराज नाटक का कथन है कि हम मीर जयपुर में बवेरा तक घुसाया और विग्रहराज से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। विग्रहराज के मंत्री श्रीधर ने अपने स्वामी को यह परामर्श दिया कि मुसलमानों को धन देकर वापस भेज दिया जाए, परंतु विग्रहराज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मित्रों, ब्राह्मणों, तीर्थों और दिवालियों की रक्षा के हेतु युद्ध करने का निश्चय किया। इसके पश्चात ललित विग्रहराज नाटक में वर्णन नहीं मिलता, परंतु अनुमान किया जा सकता है कि विग्रहराज ने मुस्लिम आक्रमणकारी को खदेड़ दिया था। इस घटना के पश्चात भी विग्रहराज और मुसलमानों के बीच संघर्ष चलता रहा। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से पता चलता है कि विग्रहराज ने मुसलमानों को आर्यावर्त से निकाल दिया था। इसका आशय यही है कि उसने मुसलमानों को पंजाब से आगे बढ़ने न दिया। राज्य विस्तार। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से प्रकट होता है कि उसने विंध्य प्रदेश और हिमालय प्रदेश तक विजय की थी। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर भी यह माना जा सकता है कि उसने शिवालिक प्रदेश में अभियान किया होगा, तभी उसने यहाँ स्थित अशोक स्तंभ पर अपना लेख उत्कीर्ण कराया। पुनश्च उसका राज्य शिवालिक प्रदेश से लेकर उदयपुर तक विस्तृत था। विद्यानुराग। विग्रहराज अपने विद्यानुराग के लिए भी प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज विजय और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार उसे कवि बांधव कहते थे। उसने संस्कृत नाटक हरिकेली नाटिका की रचना की। किलहर ने इस नाटक की बड़ी प्रशंसा की है। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि सोमदेव उसकी सभा में रहता था। उसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। अपने युद्ध मंत्री पद्मनाथम द्वारा आयोजित विद्वा मंडली का वह सभापति था। उसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। उसकी दीवारों पर हरिकेलिका नाटिका और ललित विग्रहराज उत्कीर्ण कराए। कालांतर में इस विद्यालय को इल्तुतमिश ने तोड़ डाला और उसकी सामग्री से मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद को आज अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। आज भी इसके ऊपर उन नाटकों के कुछ अंश लिखे हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर विग्रहराज की वास्तुता स्थापत्य में अभिरुचि का अनुमान किया जा सकता है। टॉड ने इस विद्यालय की बड़ी प्रशंसा की है। अजमेर में उसने अपने नाम पर विशाल सर का निर्माण कराया। इसकी परिधि लगभग 2 से 1/5 मील है। इसके चतुर्दिक किसी समय मंदिर और प्रसाद रहे होंगे। उसने विशालपुर नामक नगर की भी स्थापना की। धार्मिक सहिष्णुता। पृथ्वीराज विजय और हरिकेली नाटक से प्रकट होता है कि विग्रहराज शैव था, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। जैन धर्माचार्य धर्मघोष सूरी के आग्रह पर उसने एकादशी के दिन पशु बद्ध बंद करवा दिया था। उसके जैन विहारों का भी निर्माण किया। इस प्रकार विग्रहराज अपने अनेकानेक गुणों के कारण प्राचीन भारत के महान राजाओं में गिना जाता है। उसका शासनकाल सपाल लक्ष्य स्वर्ण युग था। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 तक। विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात कुछ काल तक चौहान वंश में अपेक्षाकृत छोटे राजा हुए, परंतु 1177 में इस वंश में पुनः एक अत्यंत प्रतापी राजा का उदय हुआ। यह पृथ्वीराज तृतीय के नाम से प्रख्यात है। यह सोमेश्वर का पुत्र और विग्रहराज चतुर्थ का भतीजा था। सिंहासन पर बैठने के समय उसकी आयु केवल 15 वर्ष की थी, अतः एक वर्ष तक उसकी माता कर्पूर देवी ने राजकाज संभाला। इसने भुवनैक को अपना सेनापति नियुक्त किया। भुवनैक कमल कर्पूर देवी के पिता अचलराज का छोटा भाई था। नागार्जुन का दमन। नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। इसके पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वयं सिंहासन पर अधिकार करने की चेष्टा की। इसने गुड़पुर पर अधिकार कर दिया। पृथ्वीराज ने उस पर आक्रमण किया। नागार्जुन भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, परंतु उसके बहुसंख्यक सहयोगी पकड़े गए। बहुतों को मृत्युदंड दिया गया और उसके सिर अजमेर के फाटकों पर लटका दिए गए। मोहम्मद गौरी का आक्रमण। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, सोमेश्वर के मंदिर को लूटा और नाडोल पर आक्रमण कर लिया। इस समय गुजरात में चालुक्य वंश के अल्पायु नरेश मूल राजगति का अधिकार था। उसके नाम पर उसकी माता नायकी देवी राजकाज चला रही थी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण की सूचना पाकर उसने अपने बालक मूल राज को गोद में लेकर सेना का नेतृत्व किया और आबू पर्वत के समीप गदरघट नामक स्थान पर मुसलमानों को पराजित किया। मुसलमान लेखक चालुक्य नरेश का नाम भीम द्वितीय बताते हैं, परंतु भारतीय साक्ष्यों के अनुसार वह मूला द्वितीय प्रतीत होता है। नाडोल के पतन के पश्चात पृथ्वीराज मुस्लिम आक्रमणकारी के विरुद्ध अभियान करने का विचार कर रहा था, परंतु उसके मंत्री कदम्बवास ने उसे ऐसा न करने का परामर्श दिया। कदम्बवास का विचार था कि मुसलमान और चालुक्य दोनों एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते करते निर्बल हो जाएंगे। यह परिस्थिति चहमान राज्य के लिए लाभकर होगी, परंतु मंत्री का परामर्श मानकर पृथ्वीराज ने बड़ी भूल की। यदि वह मूलराज की सहायता करता तो गुजरात का चालुक्य वंश चहमान वंश का मित्र बन जाता। इसके अतिरिक्त चालुक्य और चहमानों की सम्मिलित सेनाएं मोहम्मद गौरी की सेना को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती। भादानक राज्य पर आक्रमण। भादानक वंश मथुरा भरतपुर प्रदेश में राज्य कर रहा था। पृथ्वीराज ने उस पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। परमार वंश से युद्ध। जीनपाल की खरतगच्छ पट्टावली का कथन है कि पृथ्वीराज ने दिग्विजय की थी, परंतु यह ग्रंथ उन सभी राजाओं के नाम नहीं बताता जिनसे पृथ्वीराज ने युद्ध किया था, परंतु यह निश्चित है कि पृथ्वीराज ने जेजौक भुक्ति पर आक्रमण किया था। यही चंदेल वंश का राजा परमदी राज्य कर रहा था। पृथ्वीराज राशों का कथन है कि बनाफर वंश के दो वीर भाइयों आल्हा और उदल की सहायता से परमदी ने पृथ्वीराज का सामना किया। युद्ध में दोनों वीर मारे गए और परामर्श परमदी पराजित हुआ। बुंदेलखंड में प्राप्त मदनपुर अभिलेख से प्रकट होता है कि पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में परमदी के राज्य को बड़ी क्षति पहुंचाई थी। जारग घर पद्धति भी पृथ्वीराज और परमदी के युद्ध का उल्लेख करता है, परंतु पृथ्वीराज परमदी के राज्य पर अधिक समय तक अपना अधिकार न रख सका। 1183 ईस्वी के दो अभिलेख कालंजर और महोबा में मिले हैं। इनसे प्रकट होता है कि वे दोनों प्रदेश चंदेलों के अधीन थे। परमदी से शत्रुता लेकर पृथ्वीराज ने बड़ी अदूरदर्शिता का परिचय दिया और पारदर्शी पूर्ण रूप से कन्नौज नरेश जयचंद्र के पक्ष में ही हो गया। इस प्रकार चहमान राज्य को दो दिशाओं से खतरा हो गया। अपने राज्य की रक्षा के लिए पृथ्वीराज को और अधिक सैनिक व्यय करना पड़ा होगा। इसके साथ साथ भारतीयों की इस पारस्परिक शत्रुता ने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध संघ निर्माण का दुष्कर कर दिया। चालुक्यों से युद्ध। चालुक्य वंश गुजरात में राज्य करता था। उसके राजा मूलराज द्वितीय को 1178 में मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका छोटा भाई भीम द्वितीय सिंहासन पर बैठा। इस समय नाडोल के चहमान और आबू पर्वत के परमार भी गुजरात के चालुक्य वंश के अधीन थे। अनेक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि पृथ्वीराज ने चालुक्य राज पर आक्रमण किया था। पहला, पृथ्वीराज की चालुक्य वंश से शत्रुता थी, इसी से उसने मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मूलराज द्वितीय की सहायता न दी थी। दूसरा, खरतरक गच्छ पट्टावली पृथ्वीराज और भीम द्वितीय के बीच हुए युद्ध का उल्लेख करता है। तीसरा, पार्थव पराक्रमावयोग का कथन है कि पृथ्वीराज ने रात्रि काल में आबू के थारा वर्ष परमार पर आक्रमण किया था, परंतु थारा वर्ष के छोटे भाई प्रहलादन ने यह आक्रमण विफल कर दिया। आबू का परमार वंश गुजरात के चालुक्य वंश के अधीन था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि थारा वर्ष अपने स्वामी की ओर से पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। चौथा, वेरावल अभिलेख का कथन है कि गुजरात नरेश भीमदेव द्वितीय का मंत्री जगत देव प्रतिहार पृथ्वीराज के कमलिनी रूपारानियों के लिए चंद्र के समान था। इससे अनुमान किया जाता है कि चालुक्य सेना का संचालन जगदेव प्रतिहार कर रहा था और उसने पृथ्वीराज के आक्रमण को विफल कर दिया था। खरतरगच्छा पट्टावली से प्रकट होता है कि प्रारंभिक युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों में संधि हो गई। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। गुजरात नरेश भीमदेव द्वारा पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी वापस चला गया और वह पुनः आक्रमण करने के लिए योजना बनाने लगा। 1181 ईस्वी में उसने सियालकोट में एक दुर्ग बनाया। 1183 में उसने गजनवी वंश के शासक खुसरो मलिक को परास्त किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहौर को अपना अड्डा बनाकर मुसलमानों ने पृथ्वीराज के राज्य पर अनेक छोटे मोटे आक्रमण किए, परंतु इनमें उन्हें सफलता न मिली। इसी आधार पर भारतीय ग्रंथों का कथन है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को अनेक बार पराजित किया था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चहमान राज्य पर आक्रमण किया और तबर हिंद पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को रोकने के लिए तत्काल प्रस्थान किया और तराइन के युद्ध में 1191 ईस्वी में उसे युद्ध किया। राजपूतों की असीम वीरता के सामने मुसलमानों के पैर उखड़ गए, परंतु मोहम्मद गौरी फिर भी युद्ध करता रहा। उसने दिल्ली के राजा गोविंद राज पर अपने भाले से आक्रमण किया और उसके दो दांत तोड़ दिए। उस वार को सहन करते हुए गोविंद राज ने मोहम्मद गौरी पर अपने भाले से प्रत्याक्रमण किया। इससे मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया। वह अपने घोड़े से नीचे गिरने ही वाला था कि उसके एक खिलजी सैनिक ने उसके घोड़े की पीठ पर कूदकर उसे सहारा दिया और किसी प्रकार उसे युद्ध भूमि से भगा ले गया। इस प्रकार पृथ्वीराज की विजय हुई। पृथ्वीराज ने तबर हिंद पर पुनः अधिकार कर लिया, परंतु उसने मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा न करके बड़ी भूल की। यदि वह मुस्लिम सेना का पीछा करके उसे नष्ट कर देता तो मोहम्मद गौरी संभवतः दूसरे वर्ष ही उस पर पुनः आक्रमण करने की स्थिति में न हो सकता। पृथ्वीराज और जयचंद्र अपने समय के शक्तिशाली राजा थे। दोनों ही संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, अतः दोनों में शत्रुता असंभावी थी। पृथ्वीराज ने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इस शत्रुता को और अधिक बढ़ा लिया। तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात उसने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जयचंद्र उसका कट्टर शत्रु बन गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के पश्चात भी मोहम्मद गौरी ने हिम्मत ना हारी। उसने थोड़े ही दिनों में युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। तत्पश्चात उसने पृथ्वीराज के पास यह संदेश भेजा कि या वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, यदि उसने ऐसा न किया तो उस पर आक्रमण किया जाएगा। पृथ्वीराज का उत्तर स्पष्ट था। उसने युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसकी सेना में बहुसंख्यक पैदल 300,000 घुड़सवार और 3,000 गजारोही थे। इससे उसके 150 सामंत और अनेक राजा थे। मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद पर आक्रमण कर लिया। पृथ्वीराज ने युद्ध की संभावना को रोकने का प्रयत्न किया। उसने मोहम्मद गौरी के पास यह प्रस्ताव भेजा कि वह तबर हिंद पर अधिकार करके संतुष्ट हो जाए और आगे बढ़ने का विचार छोड़ दे। मोहम्मद गौरी ने छल से काम लिया। उसने पृथ्वीराज को उत्तर दिया कि वह अपने भाई के अधीन है, अतः इस प्रस्ताव पर अपने भाई की प्रतिक्रिया जानने के लिए वह उसके साथ संपर्क स्थापित करेगा। पृथ्वीराज इस धोखे में आ गया और उसकी सेना असावधान हो गई। मोहम्मद गौरी ने अपने शिविर में रात भर आग जलते रहने दी, जिससे कि पता लगे कि मुसलमान सेना वहीं पड़ी हुई है। परंतु सूर्योदय से पूर्व ही उसने सेना के साथ दूसरे मार्ग से चहमान सेना पर आक्रमण कर दिया। इस समय पृथ्वीराज सो रहा था और वह राजपूत अपने साहस का परिचय देते हुए और राजपूत अपने नित्यक्रम में लगे हुए थे। राजपूतों में खलबली मच गई, परंतु पृथ्वीराज ने असीम साहस का परिचय देते हुए स्थिति संभाली और अपने अश्वारोहियों की सहायता से मुस्लिम सेना को खदेड़ दिया। मोहम्मद गौरी ने अब दूसरी योजना बनाई और उसके अनुसार अपनी सेना 5 भागों में बांट दिया। 4 भागों में राजपूतों पर 4 दिशाओं से आक्रमण किया और जब राजपूतों ने ऊपर प्रत्याक्रमण किए तो वे पीछे हटने का बहाना करने लगे। इस प्रकार तीसरे पहर तक युद्ध होता रहा। जब मोहम्मद गौरी ने देखा कि राजपूत सेना बहुत थक गई है तो उसने अपनी सुरक्षित सेना के साथ राजपूतों पर अचानक धावा बोल दिया। इस आक्रमण को राजपूत सह ना सके, लगभग 1,00,000 राजपूत मारे गए। इसमें दिल्ली का राजा गोविंद राज भी था। पृथ्वीराज अपने हाथी से उतरकर एक घोड़े पर चढ़ गया। उसने युद्ध भूमि से भागने की चेष्टा की। मुसलमानों ने उसका पीछा किया और सरस्वती नदी के पास उसे पकड़ लिया। हसन निजामी का कथन है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को मारना नहीं चाहता था, परंतु कुछ समय पश्चात उसे पता लगा कि पृथ्वीराज उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। अतः कुछ समय पश्चात मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार हिंदू भारत के एक प्रतिभाशाली राजा का अंत हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध का यह विवरण तारीफ फरिश्ता, तबकात ए नासिरी आदि मुस्लिम ग्रंथों में मिलता है। भारतीय ग्रंथों के विवरण कुछ भिन्न प्रकार के हैं। विरुद्ध विधि विध्वंस के कथनानुसार पृथ्वीराज का सेनापति स्कंद, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में चहमान सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, इस बार पृथ्वीराज के साथ न जा सका क्योंकि वह दूसरे स्थान पर युद्ध करने लगा था। उदयराज नामक दूसरा सेनापति देर से युद्ध भूमि में पहुंचा। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार सोमेश्वर नामक मंत्री ने पृथ्वीराज पर यह परामर्श दिया कि वह अभियान न करे। पृथ्वीराज को यह संदेह हो गया कि वह शत्रु से मिल गया था, अतः उसने उसके कान काट लिया और उसे निकाल दिया। वह मुसलमानों से मिल गया और उन्हें पृथ्वीराज के शिविर तक ले आया। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने हांसी, सिरसा, समाना, कोहराम और अजमेर पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज का मूल्यांकन। पृथ्वीराज भारत के महान सेनापतियों में गिना जाता जाता है। उसने अपनी वीरता का परिचय देते हुए भादना को, चंदेलो और मुसलमानों को पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में उसकी विजय चहमान वंश के लिए ही नहीं वरन समस्त भारतवर्ष के लिए एक गौरवमय घटना थी। योद्धा होने के साथ साथ वह विद्यानुरागी भी था। उसकी सभा में पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, विश्वरूप वागीश्वर जनार्दक, विद्यापति गौंड और पृथ्वी भट्ट रहते थे। फिर भी पृथ्वीराज के चरित्र में अनेक दोष थे। वह अदूरदर्शी राजा था। मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय राजाओं का संघ बनाने की उसने चेष्टा नहीं की। जिस समय मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया उस समय उसने चालुक्यों की कोई सहायता नहीं की। चंदेलो पर आक्रमण करके तथा जयचंद गाढ़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उसने अपने समय के दो शक्तिशाली राजवंशों को अपना शत्रु बना लिया। मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध चालुक्यों, चंदेलो और गाढ़वालों ने पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं दी। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वीराज ने मुस्लिम सेना को नष्ट नहीं किया वरन उसे बचकर निकल जाने दिया। यही नहीं, इस सफलता के पश्चात वह निश्चिंत सा हो गया और अपनी नवविवाहिता पत्नी संयोगिता के साथ रासरंग में खो गया। मोहम्मद गौरी की संधि वार्ता में पढ़कर उसने विनाशकारी भूल की। मुस्लिम सेना उसके शिविर तक आ गई और वह पड़ा सो रहा था। उसका यह व्यवहार कदापि विरोचित न था। उसकी पराजय न केवल चहमान वंश के लिए वरन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। पृथ्वीराज के उत्तराधिकारी हम्मीर महाकाव्य और विरुद्ध विधि विध्वंस का कथन है कि पृथ्वीराज के पश्चात उसका भाई हरिराज चहमान वंश के सिंहासन पर बैठा। उसके विरुद्ध हसन निजामी का कथन है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर का राजा बनाया। अवसर पाकर हरिराज ने अजमेर पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज के पुत्र से सिंहासन छीन लिया। कुछ समय पश्चात मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ने हरिराज पर आक्रमण किया। हरिराज ने बंदी बनने की अपेक्षा मर जाना अच्छा समझा, अतः उसने सपरिवार अजमेर के दुर्ग के भीतर अग्नि में जलकर अपना अंत कर लिया। इस प्रकार 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने अजमेर पर अधिकार करके चौहान राजवंश का अंत कर दिया।